अप्पू, भागने से कुछ बदल नहीं जाएगा, और कुछ यादें कितनी भी कोशिश करने पर मिटाई नहीं जा सकती। वे हमारी जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन जाती हैं कि हम चाहें या ना चाहें, पर हर पल साए जैसे हमारे साथ चलती हैं। ये मेरा पर्सनल मानना है कि इंसान को कभी भी अपनी असलियत नहीं भूलनी चाहिए। वक्त वक्त पर अपने अतीत के पन्नों को पलटते रहना चाहिए, अपने बीते कल को याद करते रहना चाहिए। इससे उसे हमेशा याद रहता है कि उसकी असली जगह क्या है, वो कहाँ से उठकर इतना आगे तक आया है, और आज जिस मुकाम पर है उसे पाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं, उसे कितने समझौते करने पड़े हैं, क्या क्या सहना पड़ा है, कहाँ कहाँ और क्या गलतियाँ हुई उससे, और उस मुश्किल सफ़र में किसने उसका अपना बनकर उसकी मदद की है, और कौन दोस्त के भेस में छुपा उसका दुश्मन है। इससे एक तो इंसान के अंदर कभी घमंड नहीं आता, वो अपनी पुरानी गलतियों को नहीं दोहराता, दोस्तों और उनके भेस में छुपे दुश्मनों में भेद करना सीख जाता है, और सबसे बड़ी बात, आज में खोकर अपनी हकीकत को कभी नहीं भूलता। उसका वो बीता हुआ कल उसके आज का हिस्सा बनकर उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, क्योंकि वो फिर से वो सब नहीं सहना चाहता। मुझे ये सब कुछ नहीं पता, और ना ही आपकी ये बड़ी बड़ी उलझी हुई बातें मुझे समझ आती हैं। मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर आपका बीता हुआ कल आपके दर्द की वजह हो, तो उसे भुलाकर आगे बढ़ने में ही समझदारी है। अगर अतीत की यादें आपको तकलीफ दें, तो उसे अतीत में ही दफनाकर अपने आज को जीना चाहिए। उस बीते बुरे वक्त को बार बार याद करने से, अपने जख्मों को कुरेदने से खुद की ही तकलीफ बढ़ती है। आपने कुछ गलत नहीं किया था जो सालों से इस दर्द को सहती आ रही हैं। जो हुआ उसमें आपका कोई दोष नहीं था। आप ये तकलीफ नहीं, खुशियाँ डिजर्व करती हैं। इसलिए और किसी पर नहीं तो खुद पर तरस खाइए, और खुद को ऐसे टॉर्चर करके उन गुनाहों की सजा देना बंद कीजिए जो आपने किया ही नहीं। जो गलत था वो तो खुशी से अपनी जिंदगी जी रहा है, और यहाँ आप हर पल खुद में ही घुटती रहती हैं। जो हुआ उसका असर उस शख्स पर तो रत्ती भर नहीं पड़ा जो दोषी था, पर आपने उसके चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली है, खुशियों से मुंह मोड़ लिया है और इस दर्द को अपना साथी बना लिया है। अब तक तो मैंने पापा से बात छुपाई रखी है, पर अगर अब भी आपने खुद को तकलीफ पहुंचाना बंद नहीं किया तो मैं पापा को सब बता दूंगी, और इस मनहूस एल्बम को तो अपने हाथों से आग लगाकर जलाकर भस्म कर दूंगी। फिर न रहेगा बास और न ही बजेगी बांसुरी। अर्पिता आज कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रही थी। वो सालों से अपनी बड़ी बहन को खुद में घुटते हुए देखती आ रही थी। आज उसने न सिर्फ अपना गुस्सा और नाराजगी दिखाते हुए उसे समझाया था, बल्कि धमकाया भी था। उसकी बातें सुनकर राधिका के चेहरे पर संजीदगी के भाव उभर आए। मेरे नहीं याद करने से कुछ बदल जाएगा? जो हुआ वो सब मिट जाएगा? क्या इतना आसान है सब भुलाकर आगे बढ़ना? और कोशिश भी करूं तो क्या उससे वो सच बदल जाएगा जो अब मेरी जिंदगी की सबसे कड़वी हकीकत बन गई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपका बीता हुआ कल आपका पास्ट बनकर हमेशा आपके आज का हिस्सा रहेगा, पर अगर आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगी तो वो आपके आज और आने वाले कल को इतना इफेक्ट नहीं करेगा। तकलीफ होगी, पर उतनी नहीं जितनी अभी आपको होती है। जानती हूँ आसान नहीं है, पर आप ही तो कहती हैं कि वक्त बड़े से बड़ा जख्म भी भर देता है, तो सब वक्त के हाथों में छोड़ दीजिए, वो आपके जख्मों को भी भर देगा। आप हमेशा मुझे समझाती हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो ये बात खुद पर भी अप्लाई कीजिए और सोचिए कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और बस आगे बढ़ जाइए, खुश रहना सीखिए, क्योंकि आपके दर्द से उस शख्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर उसकी वजह से आपकी और आपके अपनों की तकलीफ बढ़ जाएगी। आप तो हिम्मत है हमारी, इतनी समझदार हैं। मम्मी के अचानक जाने के बाद आपने कितनी बहादुरी से उन परिस्थितियों का सामना किया था, अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाई थी, पापा और हम सब के साथ इस बिखरे हुए परिवार को संभाला था। पापा तो आपको अपना ब्रेव बच्चा कहते हैं ना, अगर उन्हें पता चलेगा कि उनका ये ब्रेव बच्चा कितना कमजोर है और कितने दर्द को अपने सीने में दफनाए कैसे खुट खुट कर जी रहा है, तो सोचिए उन पर क्या बीतेगी। हमारे लिए खुद को संभाल लीजिए दीदी, अगर आप यूं कमजोर पड़ गई तो सब कुछ बिखर जाएगा। आप इस परिवार का वो मजबूत स्तंभ है जिसने इस परिवार को सहारा देकर अब तक खड़ा किया है। अगर आप यूं हार मान लेंगी तो हमारा क्या होगा? तुम इतनी समझदार कब से हो गई? अपनी छोटी बहन से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर राधिका आश्चर्यचकित रह गई थी। मुख पर ताज्जुब, हैरानी, खुशी जैसे कई मिले जुले भाव झलक रहे थे। वहीं राधिका का सवाल सुनकर अर्पिता ने संजीदगी से जवाब दिया, आप मेरी रोल मॉडल हैं और मैं बस आपके जैसी बनने की कोशिश करती हूँ, कभी मेरी जैसी मत बनना। एक अजीब सा दर्द और कसक थी इन शब्दों में, और आंखों में अजीब सा सूनापन झलक रहा था। अर्पिता बस उसे देखती ही रह गई कि सबको खुशियां बांटने वाली उसकी दीदी की अपनी जिंदगी में कितना दर्द है जो कभी खत्म ही नहीं होता। एकाएक आकाश को काले बादलों ने घेर लिया था, बादल गरज उठे थे, बिजली चमक रही थी, और अगले ही पल झमाझम बरसात शुरू हो गई थी। मूसलाधार बारिश में सड़कों पर चलते मुसाफिर बरसात से बचने और सर छुपाने के लिए जगहों की तलाश करने लगे थे। स्कूल से घर जाती राधिका भी बरसात की चपेट में आ चुकी थी, और उससे बचने के लिए वो एक रेस्टोरेंट के बाहर आकर खड़ी हो गई जहां और भी कुछ लोग बरसात से बचने के लिए खड़े थे। राधिका अपने कपड़ों को झाड़ने लगी जिन पर पानी की बूंदें ठहरी हुई थीं।
फिर उसने अपने पर्स से अपना रुमाल निकाला और अपने भीगे चेहरे को पोंछने लगी। राधिका, अचानक आई एक जानी पहचानी सी आवाज सुनकर राधिका चौंकते हुए आवाज की दिशा में पलटी और जैसे ही नजर सामने खड़े शख्स के चेहरे पर पड़ी उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो इतनी हैरान हुई कि उसके हाथ से रुमाल तक छूट गया और फटी आंखों से वो अचंभित सी उसे देखती ही रह गई। उस शख्स ने राधिका के ऐसे रिएक्शन को देखा तो कुछ उलझन में पड़ गया। झुककर उसने रुमाल को उठाया और उसे झाड़ते हुए राधिका की ओर बढ़ा दिया। आपका रुमाल? राधिका, जो माधव को अपने सामने देखकर इस कदर हैरान थी कि उसे अपना ही होश नहीं था, माधव के शब्द कानों में पड़े और एकाएक जैसे वो गहरी नींद से जागी। राधिका ने सक पकाते हुए माधव के चेहरे पर से निगाहें हटा ली और हड़बड़ाते हुए उसके हाथ से अपना रुमाल ले लिया। थैंक यू। ऐसे अचानक माधव को अपने सामने देखकर वो इस कदर हैरान थी कि उसकी जुबान तक लड़खड़ा गई थी और दिल में किसी तूफान सा उठता सवाल लबों पर आ ठहरा था। आप यहाँ? आंखों में हैरानी के साथ कई सवाल लिए राधिका जवाब के इंतजार में उसे तकने लगी। टू बी कंटिन्यूड।